रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल, शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल, शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल।
वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है, हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है, संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है, सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का ये खजाना है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योत जगानी है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योत जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है, वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है।
ओम शांति। उठे, समाज के लिए उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे, समाज के लिए उठे, उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे, जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे, उठेगा जग हमारे संग साथियों, हम बढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे अपने साथ साथियों। जमीं पे आसमां को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को काटते चले, ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, विज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, उठे समाज के लिए उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। समर्थ बाल वृद्ध और नारियां रहे सदा, हरे भरे वनों की शान उड़ती रहे धरा, तरक्कियों की एक नई कतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, ये जाति धर्म बोलिया बने न शूल राह की, बड़ाए बेल प्रेम की अखंडता की चाह की, सद्भावना से ये चमन निखार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, उठे समाज के लिए उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम बढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों, हम उठे उठेगा जग हमारे संग साथियों, यदि हम उठे तो संसार उठेगा, यदि हम बढ़े तो संसार बढ़ेगा। ये संसार हम पर निर्भर है, हमारी स्थिति यदि ऊंची है तो संसार की स्थिति ऊंची है, हम यदि गिरते हैं तो संसार गिरता है, क्योंकि इस संसार के हम कौन हैं, हाईएस्ट और होलीएस्ट। तुम्हारा सब कुछ हाईएस्ट है, तुम्हारा स्थान भक्ति मार्ग में कहां दिखाया है? मंदिरों में, पहाड़ों पर और चोटी, तुम्हारा स्थान जैसे ऊंचा है वैसे ही क्या तुम्हारी स्थिति ऊंची है? यदि हमारी स्थिति नीचे तो संसार में केवल दुख और अपवित्रता ही दिखाई देगी, ये संसार हमको प्रभावित करेगा। यदि हम ऊपर है तो नीचे की कोई भी बात हमें स्पर्श नहीं कर सकती, अगर हम नीचे हैं तो जैसे संसार में लोग अकेले होते हैं और बोर हो जाते हैं, और जैसे संसार में लोग अकेले होते हैं और उनको वो अकेलापन खलता है, दुख देता है, बेचैनी उत्पन्न करता है, फ्रस्ट्रेशन लाता है, वही फ्रस्ट्रेशन हमें होगा। और यदि हमारी स्थिति ऊंची है, यदि हमारा मन संसार के प्रति वैराग से भरा है, प्रभु प्रेम से भरा है, तो हम इस संसार में उन सभी आत्माओं से भी जुड़ जाते हैं जो अभी है भी नहीं परंतु जो वैरागी थे इतिहास में, जो प्रभु प्रेम में डूबे हुए थे। जैसे रेडियो का सिग्नल होता है, एडजस्ट करते हैं 98, 99, 100 फ्रीक्वेंसी, जैसे ही हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में उसको सेट करते हैं और दूर कहीं कोई रेडियो का स्टेशन है वो उसके साथ मिल जाता है और वही आवाज आती है, चाहे वो दादिया हो, चाहे द्वापर से आई हुई वो महान आत्माएं जिन्होंने संसार को उठाने का प्रयत्न किया। जैसे हमारी स्थिति ऊपर उठ जाती है, हम उन सभी आत्माओं से अपने आप जुड़ जाते हैं और उनके वाइब्रेशंस हमें आने लगते हैं। चाहे वो क्राइस्ट हो, मोहम्मद पैगंबर हो, गुरु नानक हो, कोई भक्त हो, मीरा हो, तुलसीदास हो, सेंट फ्रांसिस, राबिया हो, सेंट एसिसी, सेंट बर्नार्ड, सेंट जॉन, अक्का महादेवी, माँ शारदा, कोई भी जो जो इस संसार में थे और जिन्होंने अपने आप को शरीर से ऊपर उठाया था और जिन्होंने अपने आप को प्रभु प्रेम से भर दिया था, अभी भी इस समय कलयुग के इस अंत में यदि हम अपने आप को इस देह से ऊपर उठा ले, अपनी चेतना को इतना ऊंचा कर दे, तो हम उन सभी आत्माओं से अपने आप जुड़ जाते हैं, उन सभी दादियों से अपने आप जुड़ जाते हैं, उसी कालखंड में हम प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि हायर लेवल पर सभी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और लोअर लेवल में सभी अलग अलग है। यहां सब एक ही है, एक ही फ्रिक्वेंसी, एक ही वाइब्रेशंस में वाइब्रेट हो रही है। Every country has produced spiritual giants. ऐसा कोई देश नहीं जिसमें महान आत्माओं का जन्म नहीं हुआ है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलियां उन्होंने बोली, परंतु चेतना सभी में एक ही थी। और वो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, वो समकालीन थे पर दूसरे दूसरे देशों में थे, पर सबकी चेतना एक ही थी, वन यूनिवर्सल स्पिरिट। तो जैसे ही हम इस देह से और इस संसार से ऊपर उठते हैं तो अपने आप उनसे जुड़ जाते हैं और उनके प्रकंपन और उनकी शक्तियां हमें आने लगती है। नए विचार आएंगे, नई कल्पनाएं आएंगी, नई प्लानिंग्स, नए संकल्प, जो हमने सोचा नहीं था, जो हमारे सामर्थ्य के परे था, वो कार्य हम कर पाएंगे, क्योंकि हम एक नहीं, सबसे हम जुड़ चुके हैं। उठे समाज के लिए उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे। हम केवल एक भारत के नहीं रहेंगे, हमारी चेतना सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वजनीन हो जाएगी, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वजनीन, सार्वभौमिक। हम उठे, उठेगा जग हमारे संग साथियों, हम बढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों, जमीन पे आसमां को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। जब हम सजेंगे तो ही ये वसुंधरा सजेगी। हम भारतीय नहीं, हम भारत है। हम वसुंधरा में रहने वाले नहीं, हम स्वयं वसुंधरा। हम विश्वग्राम में रहने वाले नहीं, हम ही विश्व है। वी आर द वर्ल्ड। भारत माता की जय नहीं, हमारी जय, क्योंकि हम ही भारत है और हम ही भारत माता है और भारत पिता भी। उठो, ये इंद्रियों के सुख, इंद्रियों के रस शुद्र है, बहुत छोटे है। जब वो टेस्ट चख लोगे तो ये स्वाद बेस्वाद हो जाएगा, फीका हो जाएगा। वो डिवाइन नेक्टर अगर चख लिया बेस्वाद हो जाएगा ये सब जिसे अभी स्वादिष्ट समझते हो फीका हो जाएगा बेमजा हो जाएगा तो तुम्हारा स्थान ऊंचा तुम्हारी स्थिति भी कैसी हो ऊंची तुम्हारी शान ऊंची तुम्हारे कर्म कर्तव्य ऊंचे इस संसार में आज भी यदि कोई श्रेष्ठ कर्म करना हो श्रेष्ठ कार्य करना हो तो किसको यजमान को बुलाया जाता है किसको ब्राह्मण को वो आता है वो पूजा हवन पाठ सब कुछ करता है ब्राह्मण को बहुत श्रेष्ठ माना गया है द्वापर से राजा महाराजा भी ब्राह्मणों के सामने झुकते थे श्री कृष्ण स्वयं भाग कर आए क्योंकि सुदामा ब्राह्मण है श्रेष्ठ है सारी रानियों को उसके आगे झुकने के लिए कह रहा है स्वयं उसके पांव पखार रहा है उसके सामने झुक रहा है क्योंकि दोस्त तो है ही पर एक कारण ये भी है कि वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ है तो ब्राह्मणों के कर्म कैसे हैं श्रेष्ठ ये किसका यादगार है तुम्हारा तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ है और साथ तुम और तुम्हारा यादगार साथ साथ चल रहा है यादगार और प्रैक्टिकल टुगेदर कितना अच्छा वाक्य है ये इसी समय हो रहा है कि तुम और तुम्हारा यादगार साथ 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 चल रहा है ये बड़ी लिस्ट दी हुई है एक जगह ब्राह्मणों की गर्व से कहो हम ब्राह्मण है सबसे बड़ा योद्धा ब्राह्मण था परशुराम सबसे बड़ा विद्वान ब्राह्मण रावण सबसे बड़ा स्वाभिमानी ब्राह्मण सुदामा सबसे बड़ा क्रांतिकारी ब्राह्मण चंद्रशेखर आजाद सबसे बड़ा क्रांतिकारी सबसे बड़ी क्रांतिकारी झांसी की रानी सबसे बड़ा क्रांति ब्राह्मण कवि तुलसीदास सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ चाणक्य सबसे बड़ा वैद्य चरक सबसे बड़ा गणितज्ञ आर्यभट्ट ब्राह्मण खगोल शास्त्री वीरामिहिर विमानन शास्त्री भरद्वाज शल्य चिकित्सक सर्जन शुश्रु बीज गणितज्ञ भास्कराचार्य वैज्ञानिक रसायनक वैज्ञानिक नागार्जुन ब्रह्मांड वैज्ञानिक कपिल ऋषि सिकंदर ने कभी कहा है जंग में उतर जाने के बाद ब्राह्मण को रोकना शेर के मुंह में हाथ डाल देने जैसा है ये अनुभव युक्त बोल है सिकंदर के क्योंकि सिकंदर का पाला किससे पड़ा था चाणक्य से सिकंदर से सबसे पहले गुरुकुल के शास्त्र छात्र टकराए थे मोहम्मद गोरी क्या कहता है अगर ब्राह्मण से कोई वस्तु चाहिए तो मांग के ले लो धोखे से छीनने पर नामो निशान मिट जाएगा अनुभवयुक्त बोल है मोहम्मद गोरी के अकबर ब्राह्मण को दोस्ती करके हराया जा सकता है लेकिन लड़कर नहीं लास्ट तक अकबर हरा नहीं पाया राणा प्रताप को लास्ट तक और जंग कब से चालू हुई दोनों की अकबर की उम्र जब 13 साल की थी और राणा प्रताप 15 वर्ष तब से लड़ाई है दोनों की एक दूसरे पर परंतु ये लड़ रहा है मातृभूमि के लिए अकबर किसके लिए लड़ रहा है बस उसे तो हिंदुस्तान का बादशाह बनना है बस उसके पिता की इच्छा थी उसके लिए लक्ष्य किसका श्रेष्ठ है अकबर का या राणा प्रताप का स्थान श्रेष्ठ स्थिति श्रेष्ठ शान श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ तुम्हारा पाठ श्रेष्ठ ये समय श्रेष्ठ कितने नाम गिनाए समय के लिए अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त ये सारी सृष्टि का ब्रह्म मुहूर्त है
श्रेष्ठ, तुम्हारा बाप
ऊंचे ते ऊंचे बाप,
और ये समय, ये क्या भाग्य
श्रेष्ठ। मैंने 8 पॉइंट्स गिनाए हैं मुरली में, अलग अलग जगह बिखरे हुए, तो निरंतर स्मृति में क्या रहे, हम
हाईएस्ट है,
सर्वश्रेष्ठ है, इसको ना भूलो। बाबा ने कहा तुम्हारे संकल्प में,
तुम्हारी वाणी में और तुम्हारे स्वरूप में निरंतर याद रखो
मैं हाईएस्ट हूं, ये भूलना नहीं, हूं भी और बनना भी हूं, बनना भी है, दोनों चीजें। तो सृष्टि में भी तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा दिखाया है, छोटी सर्वोच्च सर्वोत्तम। इसलिए अगर तुम कोई पाप करते हो, चारों को एक समान सजा नहीं है, ब्राह्मण शूद्र वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चारों ही यदि सेम पाप करे, दुर्योधन और युधिष्ठिर की परीक्षा इसीलिए हुई थी ना, राज्यभिषेक से पहले वो चार अपराधी आते हैं, दुर्योधन क्या कहता है, इन्होंने चोरी की है, चारों को एक ही सजा, चारों को मृत्यु दंड। तो युधिष्ठिर जो निर्णय लेता है वो अलग अलग होता है, ब्राह्मण को सबसे ज्यादा सजा है क्योंकि वो ज्ञानी है, जानता है। शूद्र को सबसे कम सजा है क्योंकि वो अज्ञानी है, वो नहीं जानता।
तो ये आठों ही बातें तुम्हारी कैसी है, ऊंची है,
हाईएस्ट है,
ऊंचा स्थान, ऊंची ऊंची स्थिति, ऊंची शान, ऊंचा काम कर्तव्य, ऊंचा पाठ, ऊंचा समय, ऊंचा बाप और
ऊंचा भाग्य, हाईएस्ट। दूसरा,
तुम हो होलीएस्ट, और भक्ति में क्या गायन है, कमल
नयन कमल हस्त कमल मुख, तुम्हारे मुख से, तुम्हारी मुख की तुलना किसके साथ की गई, कमल मुख, कमल हस्त,
कमल नयन, कर कमल, चरण कमल,
ये सारे शब्द है। कमल समान, अस्पर्शित, अस्पर्श, अनटच्ड, वो पानी, वो कीचड़ तुम्हें स्पर्श न करे, कर्म और कर्म के प्रभाव दोनों ही तुम्हें स्पर्श न करे, कर्म और कर्म के फल से अप्रभावित, डिटैच्ड, किसी भी कर्मेंद्रियों के रस में डूबने वाले नहीं, वशीभूत। अगर वशीभूत हो जाते हैं तो क्या कहा जाता है, भूत, शूद्र। और शूद्रों का कर्तव्य और भूतों का भूतों का क्या कर्तव्य, दुख देना और दुख लेना। जैसे ही पवित्रता को छोड़ते हो और रिंचक मात्र भी अपवित्रता में उतरते हो, इवन एट द लेवल ऑफ थॉट, तुरंत दुख की अनुभूति होगी, तुरंत। मन के भाव बदलते ही दुख अनुभव होता है, और जो जितनी प्योर आत्मा होगी उसको उतना ज्यादा दुख होगा। जिसमें दाग ही दाग लगे हैं उसको दुख नहीं होता है, जिसने विवेक का खून कर रखा है, पहली बार चोरी करते समय हाथ कांपते हैं, वो जो निपुण चोर होते हैं, निष्णात मास्टर थीफ, वो घबराते हैं, सीजन्ड क्रिमिनल्स। राजा के सामने चोर खड़े हैं पहला, उसको कहते हैं राजा तुमने ये अच्छा नहीं किया, वो जाता है आत्महत्या कर लेता है। दूसरा चोर उसको कहते हैं तुमको ये शोभा देता है, तुम चोरी करते हो, अपने देश का, अपने घर कुल का नाम खराब कर रहे हो, इतना भी नहीं समझता, उसे डांटते। वो जाता है कमरे में बंद कर लेता है खुद को। तीसरा चोर उसे राजा कहता है कि इसको तो सजा सुनानी चाहिए, उसे 10 कोड़े लगाए जाए। वो शहर छोड़कर ही चला जाता है। चौथा जो होता है इसको गधे पर बिठाओ, उल्टा काला मुंह करो और राज्य में घुमाओ, और ये सब करते हुए भी वो हंस रहा है, हा हा हा। चार व्यक्ति, चार कर्म, चारों को अलग अलग सजा, पर प्रतिक्रिया सबकी अलग अलग। राजा बुद्धिमान है, वो अगर पहले को अंतिम वाली सजा सुनाता था तो उसने तो वैसे ही इतना केवल बोला कि तुमने अच्छा नहीं किया, बस इतना ही बोला। परंतु उसे लगा तो हर आत्मा की सेंसिटिविटी, रिसेप्टिविटी अलग अलग होती है, इसके लिए एक जैसी सजा सबको नहीं होती है। तो वशीभूत अर्थात भूत, और भूतों का काम क्या है? दुख देना, दुख लेना। जब तुम तब तुम ब्राह्मण नहीं हो, तब तुम कौन हो? शूद्र हो। तो तुम कौन हो? इस सृष्टि की होलीएस्ट आत्मा है। बाबा ने इस मुरली में कहा, ये दो बातें नहीं भूलना, हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो, हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो, ये तुम्हारी स्मृति में रहे, निरंतर स्मृति में रहे। जब ये रहेगा तब बाप की प्रत्यक्षता होगी, जब तक ये नहीं तब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं होगी। ये इसी के कारण रुकी हुई है। ये संकल्प में, वाणी में और स्वरूप में हो, ये दोनों बातें। तो ये पहली मुरली है। हाँ, इसमें और एक बात बताइए, तुम में हर ब्राह्मण में ब्रह्मा दिखाई दे, तुम क्या बन जाओ? स्वच्छ दर्पण, जिसमें कोई देखे तो ब्रह्मा दिखाई दे। रचना में रचता दिखाई दे, तुमको कोई देखे तो लोगों के मुख से क्या निकले कि इनको ऐसा तकदीरवान किसने बनाया? सन शोस फादर, तुम में वो दिखाई दे। ये जो दूसरी मुरली है उसमें भी यही बातें हैं, तुम में कौन दिखाई दे? वो। तो क्या बनना है? मिरर, क्लीन मिरर, प्योर मिरर। उसके लिए स्वयं को ऊंचा उठाना है, तो ही होगा ये काम, तो ही होगी बाप की प्रत्यक्षता। बाप समान बनना, तकदीर की तस्वीर। दूसरी मुरली, अखबार, कार्ड्स, मीडिया। मीडिया से जो सेवा होती है उसके लिए क्या कहा बाबा ने? यह जल है, परिचय और प्रेम का। ये मीडिया से सेवा करना क्या है? जल, प्रेम का और परिचय का। जल तो दे दिया, परंतु बीज से फल इससे नहीं आएगा, वो किससे आएगा? भक्तों की इच्छा क्या है? भक्तों की क्या इच्छा है? सुख शांति की इच्छा नहीं है भक्तों की, लाइट के साक्षात्कार की इच्छा है। तो तुम्हें भक्तों को क्या करना है? कराना है साक्षात्कार, कराना है। किसका साक्षात्कार कराना है? लाइट का। और वो साधन क्या है तुम्हारा? तुम्हारे नयन। तो तुम्हारे नयनों में उनको क्या दिखे? लाइट, ज्योति स्वरूप। पर वो होगा भी कब? जब ये इसको दे देना,
जब तुम लाइट स्वरूप में स्थित होगे तो ये काम होगा, तब तक ये काम नहीं होगा। अगर तुम ही बोझिल हो तो ये काम नहीं होगा। जैसे आकाश में सितारे हैं तो तुम्हारे में लाइट का सितारा, लाइट का गोला दिखाई दे। तुम्हारी आंखों से क्या हो? लाइट का साक्षात्कार। ये साईं बाबा का एक वीडियो है जिसमें दिखाया है साईं बाबा बैठे हुए हैं, और सबसे पहली मुलाकात उनकी जो रिकॉर्डेड है वो है चांद। वो चांद जो है वो अपनी घोड़ी को ढूंढ रहा है रोशनी, और साईं बाबा बैठे हुए हैं। वो पूछता है क्या मेरी घोड़ी को आपने देखा है? तो साईं बाबा आवाज लगाते हैं और वो भाग कर आ जाती है। साईं बाबा उर्दू में कुछ पढ़ते हैं तो वो चांद कहता है अच्छा आप मुसलमान हो, फिर वो हिंदी के संस्कृत के श्लोक चालू करते हैं अच्छा अच्छा आप हिंदू हो, फिर वो उसकी तरफ देखते हैं और दोनों ही आंखों में क्या दिखाई देता है? ज्योति, लाइट। तो इस मुरली का सार भी यही है, तुम्हारी आंखों में क्या दिखाई दे? ज्योति, लाइट, लाइट का गोला। जैसे आकाश में सितारे दिखाई देते वैसे तुम्हारी आंखों में सितारे दिखाई दे। तो किसी को भी देखो तो क्या दिखे? तो आज देखना किसी को और पूछना उसको क्या दिखाई दे रहा है, इधर एक सितारा इधर एक सितारा। और उसको ये भी दिखाया है, वो मालसापति होता है, वो खंडोबा का श्री कृष्ण का भक्त है। जैसे ही देखता है वो फकीर को आते हुए, उनके मुख से अचानक निकलता है साईं बाबा। तो वो कहता है मैं तुमने साईं क्यों कहा? तो वो कहता है अचानक निकल गया, मैंने कुछ कहा ही नहीं, अपने आप कहां से, मैंने कभी सोचा भी नहीं, अपने आप निकल गया। तो साईं बाबा कहते हैं मैं ये तभी मानूंगा जब जहां मैंने तपस्या की है वहां पर अभी भी वो चार दीपक होंगे जमीन के अंदर। जमीन को ले जाता है पेड़ के पास, जमीन को खोदते हैं तो चार दीपक दिखते हैं वहां पर। ऐसी कहानियां हैं। तो ये इसमें दिखाया है
बेचारे की घोड़ी खो गई है।
तुम्हें कैसे मालूम मेरी घोड़ी खो गई है?
फकीरों पे अल्लाह की रहमत होती है चांद।
चांद, तब तो आपको यह भी मालूम होगा मेरी घोड़ी मुझे मिलेगी कि नहीं। वो जब से मेरे घर आई है मेरी तकदीर खुल गई है, मैं धूपों का पाटल तक बन गया हूं। मिल जाएगी ना मेरी घोड़ी?
श्रद्धारक सबूरी से काम ले, काम हमेशा फतेह होगा।
ये तो करिश्मा है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन वालिही व असहाबिही अजमईन।
तो आप मुसलमान हैं? मैं भी मुसलमान हूँ।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्।
आप हिंदू हैं? माफ करना, मैं खामखा हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ गया।
तुम्हारी घोड़ी का नाम बिजली है ना?
आप तो सब कुछ जानते।
बिजली
आपका शुक्रिया अदा करूंगा। चलिए आप हमारे साथ रुक कौन चलिए।
मुझे शिरडी जाना।
शिरडी? कितनी खुशी की बात है, परसों मेरे भतीजे की।
तो दिखाया है जैसे उसकी तरफ देखता है दोनों आंखों में
ज्योति दिखाई देती है उसे, तो हर व्यक्ति अपनी एक विचारधारा के शिकंजे में कैद है। हिंदू, मुसलमान, धर्म, जाति, सांप्रदाय, मान्यताएं, बीके, नॉन बीके, क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन, जैन, नॉन जैन, देश, भाषा, कैद रहता है और दुनिया को भी वो उसी नजर से देखता है। ये बीके है कि नॉन बीके है, ये ब्राह्मण है कि शूद्र है। नाम में धर्म को देखता है, नाम में धर्म को देखता है, भाषा में देश को ढूंढता है, कैद है। पर जो इन सभी कैदों से बाहर है वो मुक्त आत्मा है, जीवन मुक्त है, उन्हें धर्म, जाति, भाषा कैद नहीं कर सकती, उनकी चेतना सार्वभौमिक है। तो बाबा ने कहा, भक्तों को किस बात की इच्छा है, ज्योति का साक्षात्कार कराओ, पर वो ज्योति का साक्षात्कार तुम तब करा सकोगे जब तुम स्वयं ज्योति स्वरूप हो, लाइट स्वरूप हो, जब तुम स्वयं कर्म में हल्के हो और कर्म में लाइट हो। यदि तुम्हारे कर्म तुम्हें भारी कर रहे तो तुम दूसरों को ज्योति का साक्षात्कार, लाइट का साक्षात्कार कैसे करा सकोगे। ब्रह्मा का उदाहरण दिया है, ब्रह्मा जो था वो कैसा था, साकार में एक तरफ तो विस्तार, एक तरफ तो रमणीकता, एक तरफ तो संबंध संपर्क, एक तरफ तो सबके साथ है पर दूसरी तरफ न्यारा भी है, एक तरफ कर्मों की अति और दूसरी तरफ अंत, अति और अंत, ये रूहानी ड्रिल निरंतर करते रहो। एक तरफ कर्म क्षेत्र, एक तरफ परम धाम, लाइट हाउस, लाइट हाउस अर्थात ज्योति देश। परम धाम का एक नाम ज्योति देश, अभी अभी यहां, अभी अभी वहां, अभी अभी कर्म, अभी अभी उधर, अति अंत, अति अंत। अति किसके लिए कहा है यहां पर, कर्मों की अति अर्थात बिजी रहना, अंत अर्थात परम धाम, ये ड्रिल करते रहो। अभी अभी आवाज, अभी अभी आवाज से परे, साउंड, साउंडलेस, अभी अभी शरीर, अभी अभी शरीर से बाहर, बॉडी, बॉडीलेस, अभी अभी व्यक्त, अभी अभी अव्यक्त, अभी अभी कर्म क्षेत्र, अभी अभी परम धाम, अभी अभी ड्यूटी ड्रेस, अभी अभी होम ड्रेस, अभी अभी टाइम, अभी अभी टाइमलेस, टाइम टाइमलेस, बॉडी बॉडीलेस, साउंड साउंडलेस, व्यक्त अव्यक्त, कर्म क्षेत्र और परम धाम, लाइट हाउस, बॉडी बॉडीलेस, टाइम टाइमलेस, अभी अभी समय में, अभी अभी समय से परे, समय की सीमा रेखा से पार, यही अंतिम ड्रिल है। इसकी ही प्रैक्टिस, इसकी ही रिहर्सल, यही अभ्यास योग है, यही अल्टीमेट अभ्यास तो यही है। शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना, शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना, शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना, यही प्रैक्टिस करते हो। चिड़िया उड़, हाथी फरिश्ता उड़, देवता नहीं उड़, होली हंस ब्राह्मण तो ये खेल करते रहो। चातक पक्षी उड़, होली हंस उड़, बगुले बगुले भी उड़ते हैं, उड़ता है। गिद्ध पक्षी होता है, बहुत ऊंचा उड़ता है पर सारा ध्यान नीचे धरती पर पड़े हुए मांस की तरफ होता है। उड़ता तो है पर ध्यान कहाँ है, चमड़ी की तरफ, देह की तरफ, शरीर की तरफ। उड़ते तो वो भी है पर बुद्धि कहाँ है, नीचे। एक चील ने मांस का एक टुकड़ा लिया और आकाश में उड़ने लगी और उसके पीछे बहुत सारे कौवे उड़ने लगे, कौवे उड़ने लगे, चील आगे कौवे पीछे, चील आगे कौवे पीछे, चील और तेज, कौवे और तेज,
जहां चील वहां कौवे, जहां चील वहां कौवे, इस डाली से उस डाली। चील परेशान हो गई क्या करूं, और उड़ते उड़ते अचानक वो मांस का टुकड़ा छूट गया, कौवे चले गए, कौवे मांस के पीछे। चील अब झाड़ के डाली पर बैठ के देख रही है, अच्छा अब समझ में आया राज, ये मेरे पीछे नहीं थे, इसके पीछे थे, इसको छोड़ते ही उससे मैं मुक्त हो गई, अपनी आसक्ति और अपने मोह को छोड़ते ही ये भूत हमारा पीछा करना छोड़ देंगे। वो मांस का टुकड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु, पद, कोई पोजीशन, पैसा, मनी कॉन्शियसनेस, पैसा 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 पैसा, दिन रात पैसों की चिंता। पैसा नहीं है तो कहां से आएगा, और है तो जाना नहीं चाहिए, बस मेरा है डर। दोनों स्थितियों में भय है, दोनों स्थिति में दुख दुविधा चिंता है। स्वामी विवेकानंद छोटे थे, नरेंद्रनाथ, उनको किसी ने कहा ये जो रामकृष्ण है ये पैसों को छूते तक नहीं है, एलर्जी है इनको पैसों की। उन्होंने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए, उनके तकिया के नीचे एक आना डाल दिया चुपके से, और जब रामकृष्ण गए और तकिया पे लेटे, एकदम करंट लगा और उठे वो ये किसने लगा, जैसे सांप है हटाओ इसको। वो बचपन में खेल करते थे जब रामकृष्ण छोटे थे, तब ये पैसा, ये मिट्टी, ये पत्थर, इन तीनों में क्या अंतर है, एक ही तो है, ये सेम, फिर भी ये कामिनी कांचन व्यक्ति को पागल कर देता है। कांचन माया ही है, स्त्री पुरुष के लिए कामिनी कांचन, स्त्री के लिए पुरुष कांचन। तो बाबा ने कहा ये ड्रिल करते रहो, अति अंत, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सूक्ष्म वतन में जाते रहो। जैसे ये दुनिया ऐसी समानांतर दुनिया इस संसार से परे है, इसके लिए शाम के समय, रात के समय आकाश को देखना, स्टार गेजिंग, सन गेजिंग, मून गेजिंग, स्काई गेजिंग, और सोचो कितना विराट है, कहाँ है सूक्ष्म वतन, कहाँ है वो परम धाम। खाली बैठ कर ही नहीं जाते रहना, वैसे भी जाना आकाश को देखते हुए, ये सब, ये प्रकृति विराट है, ये आकाश विराट है, देखो, और परम धाम को सोच के बारे में सोचो, परम धाम से बातें करो, सूक्ष्म वतन में पहुंचो। तो ये 16 सूत्र है कर्मों में लाइटनेस लाने के। बाबा ने मुरली का सार क्या है, कर्म कैसे हो लाइट, कर्म तुम्हें भारी ना करे। ब्रह्मा का उदाहरण, अगर कर्म ही भारी कर दिए, कर्म के वजह से ही बोझ हो रहा है, तो कैसे साक्षात्कार करा सकोगे, और यही तो, इसी से प्रत्यक्षता होगी। तो सबसे पहली स्टेप, हर कर्म कैसा हो, श्रीमत अनुसार। अगर श्रीमत अनुसार है तो लाइट होगा, अगर श्रीमत अनुसार नहीं है, मन मत परमत उसमें है, तो मन खाएगा, मन भारी होगा। दूसरा, सोल कॉन्शियसनेस, आत्माभिमानी स्थिति में कुछ भी कर्म करो, याद नहीं है भगवान की, याद नहीं है श्रीमत का, कोई खबर नहीं है, परंतु आत्मिक स्थिति है, बस इंडिपेंडेंट है, एक 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 केवल आत्मिक स्थिति, उसमें जो भी कर्म किए जाएंगे वो हल्के ही होंगे, अच्छे ही होंगे, श्रेष्ठ ही होंगे। तीसरा, सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस, अर्थात बाप की याद, याद में किए हुए कर्म, भले आत्मिक स्थिति नहीं है परंतु याद है, ये किस लिए कर रहा हूं, ये किसका है, तो वो कर्म श्रेष्ठ होंगे, महान होंगे। तीसरा, चौथा, अगला, निस्वार्थ, तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। कल भी कहा, स्वयं को सोचो, विश्व की स्टेज पर हूं मैं, विश्व की सेवा में हूं, विश्व परिवर्तन का आधार है, सेवा में बिजी रहना परिवर्तन का आधार, याद रखना, ये एग्जाम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सरेंडर, नो रिपीटेशन, एम एट 4 5 समर्पण
भक्ति में क्या होता है, श्री कृष्णार्पणम मस्तु शिवार्पणम मस्तु, हर कर्म को क्या किया जाता है, भगवान को अर्पित कर दिया जाता है। सेवा करो अर्पित कर दो, कोर्स करा के आए छोड़ दो, अब वो ज्ञान में आएगा कि नहीं उसकी चिंता मत करो, वो सहयोगी बनेगा कि नहीं उसकी चिंता मत करो, इनविटेशन दे दिया वो चलेगा कि नहीं इसकी चिंता मत करो, उसके पीछे मत पड़ो कि आपका ट्रेन का रिजर्वेशन करा दे क्या, उसको आना है तो खुद ही पूछेगा, जबरदस्ती कोई आ नहीं सकता यहां पर।
तो समर्पण अगला, हर कर्म कैसा हो, एक्यूरेट।
बाबा हम आपकी याद में थे तो वहां सिरोही पहुंच गए, पता ही नहीं चला अपूरोट कब आया ट्रेन में, इतना बाबा की याद में खोए थे। बाप क्या कहते हैं, ये याद थी नहीं, अगर याद में होता तो अब बराबर अपूरोट आता है तुमको टचिंग होती, तो तुम याद में थोड़ी थे,
ये माया थी, ये तुम्हारा क्या है बहाना है।
एक आर्मी सर्जेंट होता है और 3 हफ्ते की छुट्टियों के बाद वापस सभी सिपाही वापस आते हैं, तो सभी लेट आते हैं 3-4 घंटे। वो कहते हैं अभी एक एक का कोर्ट मार्शल ही करता हूँ, एक एक को बुलाता है, हाँ तुम बताओ, अब तुम बताओ तुम लेट कैसे हुए। बोलते निकला तो मैं टाइम पर ही था, पर क्या हो गया मेरी बस छूट गई, और बस छूटने के वजह से मुझे हिच हाइक करना पड़ा, हिच हाइक अर्थात वो ऐसा करते ना वो लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, तो उसमें एक बूढ़ी माता थी, उसकी एक घोड़ा, उसका एक घोड़ा था, एक बग्गी थी, और वो बड़ी भली मानुस तो उसने मुझे बिठाया और वो बग्गी से मैं आया, इसलिए लेट हो गया ना। तो सर्जन कहता है ओके दैट्स अ रीजनेबल रीजन, तुम जा सकते हो। दूसरे को पूछता है तुम बताओ, वो कहता है निकला तो मैं भी टाइम पे था, पर क्या करूं मेरी बस छूट गई, और बस छूटने की वजह से क्या हुआ कि, पर वो तो अच्छा हुआ कि एक बूढ़ी माता थी, उसकी एक घोड़ा था और एक बग्गी थी, उसमें मैं बैठ गया और फिर धीरे धीरे यहाँ पहुंच गया। बोलते ओके ठीक है तुम भी जा सकते हो। तीसरा आता है, कहते बताओ तुम क्यों लेट हो गए, बोलते निकला तो मैं टाइम पर ही था, पर क्या करूं मेरी बस छूट गई, वो तो अच्छा हुआ एक बूढ़ी माता मिल गई जिसके पास घोड़ा था बग्घी थी उसमें मैं बैठ गया। बोलते ओके ठीक है जाओ। और जितने होते हैं सब यही कारण देते और यही, तब तक तो इसका पारा चढ़ जाता है, और जो लास्ट सैनिक होता है उससे ये पूछता है तुम्हारी भी बस छूट गई होंगी। वो कहता बिल्कुल, तो तुमको भी एक बूढ़ी माता और एक बग्घी मिल गई होगी। वो कहता है नहीं मुझे तो मर्सिडीज मिली, तो लेट क्यों हो गया। वो क्या कहता है क्या करूं पूरा ट्रेन पूरा रोड बग्घिया और बूढ़ी माताओं से भरा हुआ था। बाकी मिले तो मुझे तुम्हारे कर्म कैसे हो एक्यूरेट, तुम्हारे कर्म कैसे हो त्रिकालदर्शी, स्थिति में किए हुए, आगे आगा पीछा सारा सोच कर, ऐसा नहीं कर्म कर लिया और उसके बाद में सोच रहे अरे वरदान भी था, अरे ये नहीं करना चाहिए था क्यों कर दिया। अगला डिटैच्ड, कर्म कैसे हो एकदम डिटैच्ड, कर्म कर लिया और उससे कोई आसक्ति नहीं है, कर्मों में हम बंध जाते हैं, मेरा भाषण मेरा चिंतन मेरी क्लास मेरी मुरली मेरे स्टूडेंट मेरा सेंटर सब सब में बंध जाते, ये भी सूक्ष्म बंधन है सोने की जंजीर है, डिटैच्ड किया और अलग हो गए उससे। अगला साक्षी भाव, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, हर कर्म किस अवस्था में किया जाए
साक्षी भाव में किया जाए। अगला निमित्त,
मैं निमित्त हूँ मैं निमित्त हूँ मैं निमित्त हूँ मैं निमित्त हूँ मैं निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसको ठूस ठूस ठोक ठोक के ठूस ठूस के कूट कूट के अंदर भर देना है कि मैं निमित्त हूँ मैं निमित्त हूँ। वो चाहता था तो ये कर्म किसी और से भी करा सकता था। अगला
सत्य,
उसमें असत्य ना हो, हमारे कर्म कैसे हो सत्य हो, सत्यम व्रतम व्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्य 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 में बहुत बल है, सत्य में बहुत पावर है, झूठ खोखला है, झूठ बोलने में बहुत याद रखना पड़ता है, सत्य में याद नहीं रखना पड़ता जाता, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट सब जगह सुनाओ, झूठ में किसको क्या बोलना, अलग लोगों को अलग अलग बोलना पड़ता है, टेंशन होता है कहीं भूल भी गया तो।
डर रहता है, झूठ में डर, झूठ की बहुत सारी बातें हैं। अगला, वो कर्म ऐसा हो जो सफल हो। बार बार असफल हो रहे मतलब कर्म में कोई ना कोई खोट है। अगला, उसका कोई पश्चाताप ना हो, तब हल्कापन रहेगा। अगला, दूसरों को सुख देने की अंदर भावना हो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आत्मानुमोक्षार्थम जगत तृतीयाय च, स्वयं की मुक्ति और विश्व के कल्याण के लिए। दूसरों से दुआएं मिले, ऐसे कर्म। सबकी मदद करते रहो तो क्या मिलेगी? आत्माओं की दुआएं, ये दुआएं ही आगे बढ़ाएगी। अगर तुम्हारे अपने अंदर कोई कमी भी है, उस दिन कल कहा ना, अपनी विशेषता, कोई सब्जेक्ट और कोई गुण की कमी है तो उसी गुण को दो, तो उससे क्या होगा, आत्माओं की दुआएं मिलेगी, और दुआएं तुम्हारी कमी को नष्ट कर देगी। तो ये देते रहो। अगला, ड्रिल, कर्म के बीच में क्या क्या करते रहना है, ड्रिल ड्रिल ड्रिल। तो ये सारे कर्म है, उसमें ये सब बातें, इनको याद कर लेना आज। समर्पण संपूर्ण हो। राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के नजदीक है, उनको लगता है थोड़ा सा स्नान कर ले, अपने धनुष को जमीन में गाड़ते हैं श्री राम, जाते हैं, वापस आकर देखते तो खून। धनुष को लक्ष्मण उखाड़ के बाहर निकालता है, नीचे देखता है एक मेंढक। उस मेंढक से लक्ष्मण कहता है, तुम चिल्लाए क्यों नहीं, हम तुमको तुरंत निकाल दिए होते। वो धनुष गड़ा हुआ है तब तक, वो आ रहे तब तक। वो मेंढक कहता है, जब भी मुझे कोई दुख होता है तो मैं हे राम कह के चिल्लाता हूं, हे राम मेरी रक्षा करो, और आज राम ने ही धनुष गाड़ा है, अब मैं किसको पुकारूं, इसलिए मैं मौन था, इसलिए मैं चुप था। ऐसा समर्पण भाव भक्ति में क्या सोचते, होई सोई जो राम रची राखा, जो कुछ हो रहा है कौन कर रहा है, राम कर रहे हैं, ये राम की इच्छा है, समर्पण। तो ये है सेकंड मुरली। तो फर्स्ट मुरली में क्या सुना, हाईएस्ट होलीएस्ट, उसकी वो सारी पॉइंट, स्वच्छ दर्पण, बाप की प्रत्यक्षता, तुम में ब्रह्मा दिखाई दे, वो सारी पॉइंट। दूसरी मुरली, आंखों में लाइट, इसके साथ माताओं से मुलाकात है। उसमें बाबा ने कहा, अंत शुरुआत में भी माता है, अंत में भी माता है, गोपी वल्लभ की गोपी है। अगर कोई दुख होता है जीवन में, या कोई गाली देता है, तो क्या सोचो, वर्तमान को नहीं देखो, भविष्य को देखो, क्या सोचो कि इसमें भी कुछ कल्याण भरा हुआ है, तो वो भगवान की याद दिलाएगा तुमको, ये सोचो इसमें कल्याण है। तो ये भी एक पॉइंट है, कठिन परिस्थितियां भी सहज हो जाएगी। होमवर्क नंबर वन, हाईएस्ट की पॉइंट्स, होलीएस्ट की पॉइंट, इसमें लिखना है बस, याद करना है, मेन तो ये वाला है। दूसरा, दुख के क्या फायदे हैं, दुख के फायदे, जीवन में जो दुख होते हैं उसके क्या फायदे, दुख के अंदर ब्रैकेट में अपमान, इंसल्ट, ग्लानी, निंदा, घृणा, तिरस्कार कोई करता है, ये सब दुख देता है ना, चोट पहुंचाता है, संडे की मुरली, उससे क्या फायदे। तो एक तो बाबा की याद तीव्र होती है, अंतर्मुखी हो जाते हैं, वो सारी पॉइंट। तो ये सारी बातें इसमें है। अनुभव किसको सुनाने, आ जाओ। लखन भाई को भी अनुभव सुनाना है कि ना, लखन भाई एक दिन आप भी अनुभव सुनाओ, थोड़ा कल सुनाना, माइक है।
ओम शांति। नागपुर से है हम, शरीर का नाम प्रदीप है और ज्ञान में 14 साल से है। तो वैसे तो सचिन भाई जी के भट्टी के बहुत सारे अनुभव है, उसमें से एक अनुभव बताना चाहते हैं, लिक्विड भट्टी का अनुभव बताना चाहते हैं। लिक्विड भट्टी में जब हम लिक्विड भट्टी कर रहे थे तो शुरू नहीं लिक्विड हाँ, तो शुरू शुरू में थोड़ा भारी गया, थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन बाद में ऐसी प्रैक्टिस हो गई कि वो नेचुरल हो गया। तो हमारा बहुत समय का एक संस्कार था, बहुत कड़ा संस्कार था, वो इमर्ज करने के बाद भी इमर्ज नहीं हो रहा था, ये उसका रिजल्ट था। इमर्ज नहीं हो रहा था, इमर्ज करने के प्रयास से वो इमर्ज नहीं हो रहा था, ऐसा अनुभव अच्छा आ गया। और दूसरा अनुभव यह है कि जब भी हम क्लास सुनते हैं भाजी का, हमारी ड्यूटी का समय रहता 6:30 बजे, सवेरे कंपनी में जॉब करते हैं तो हम 5 बजे तक पूरा फ्रेश हो जाते और बाद में 5 बजे जैसे फ्रेश हो जाते भाई जी का क्लास और वो भोजन बनाना सब साथ ही शुरू होता, और भोजन और ये, और फिर 6 बजे जैसे इनका क्लास खत्म होता हमारा भोजन भी बनाना खत्म होता। तो जब अपना एक एग्जाम का रिजल्ट था तो 29% रिजल्ट लगा था ना उस एग्जाम का, लेकिन हमने अव्यक्त मूल्य एक भी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ जो भोजन बनाते बनाते क्लास सुनते थे उसी से हम पास हो गए, लेकिन 26 मार्क आ गए, लेकिन 29% ही रिजल्ट लगा था उस समय। तो ये ब्रेन जिम का कमाल है। और क्लास भी सुनते थे, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं पढ़ते तो अंदाज से कि ऐसा नहीं है, टोली लगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्लास सुनते थे तो बाबा की मदद भी मिलती थी। और ब्रेन जिम का कमाल, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो भी करूँगा उसमें सफलता है, जो मैं करूँगा उसमें सफलता है। आई एम टॉपर, आई एम विनर, ये भी आई एम सक्सेसफुल। और बाबा को पहले बता दिया था कि बाबा इसमें पास करो, तो बाबा ने मदद किया। मेहनत भी किया था, लेकिन बाबा ने, वो तो उनका अलग पर्सनल। तो ये बाबा की कमाल है। बाद में हम रेगुलर में क्लास पढ़ने लगे तो 10 में से 10, चार एग्जाम में 10 में से 10 आए, बाकी सब में 7 के ऊपर ही आए मार्क। और अभी भी चल रहा है, अभी तक 4 साल से भाई जी भट्टी करा रहे, 4 साल से जितने भी क्लासेस करा रहे हमने सब क्लास सुने हैं। कभी कभी मिस हो जाता है, कभी कभी ड्यूटी रहती है, कभी कभी 16 घंटा रुकना पड़ता है कंपनी में जॉब करके। और लिक्विड के भट्टी के समय हमारा अनुभव ऐसा रहा कि लास्ट असम प्राणिक भट्टी के समय ऐसा अनुभव रहा कि लास्ट के तीन चार दिनों में ऐसा हो गया कि 16 घंटे ऊटी पे रुकना पड़ा था। और सवेरे हम टमाटर और पालक इसका जूस बनाते थे, और मिक्सर भी नहीं था हमारे पास, लेकिन भट्टी के कारण हमने मिक्सर भी लाया था। ऐसे हमारे बहुत सारे भट्टी के कारण मिक्सर भी लाया, असंभव लिक्विड जूस बनाने के लिए। तो ऐसे हमारा अनुभव रहे, इसलिए बाबा का, एंजल ऑफ शिवा टीम का और भाई जी का तहे दिल से धन्यवाद। अब एक शेर सुनना चाहते हैं। गुलाब का फूल कभी नहीं सूखता, मधुबन की याद आए तो नागपुर में दिल नहीं लगता। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू भाई जी का, थैंक यू एंजल ऑफ शिवा टीम का, थैंक यू सबका। भी कोई प्रॉब्लम आता है तो विठल भाई से हम बात करते रहते हैं, ये हमारे कनेक्शन में कांटेक्ट में है हमेशा। और संदीप भाई से भी कांटेक्ट में रहते, और सचिन भाई जी ने एक बार नागपुर में भट्टी किया था तो इनविटेशन दिया था संदीप भाई जी ने, सचिन भाई आए भी थे, तो उस समय का अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू।
मैं मुरादाबाद से हूँ, शरीर का नाम बीके सुमिता, 10 साल से ज्ञान में हूँ। ये अव्यक्त क्रांति जब स्टार्ट हुई तो मार्च में क्लासेस सिर्फ सुनी, और क्लासेस सुन के एग्जाम भी सिर्फ क्लासेस में। भाई जी ने इतना प्रेशर डाला, एग्जाम जरूर दो, जिसने भी नहीं पढ़ा है तब भी दो। सिर्फ क्लासेस सुनी थी, एग्जाम दिया तो रिजल्ट तो फेल ही था, पर वो अगले दिन सुशील भाई और बहुत सारे महारथियों का रिजल्ट देखने के बाद फिर लगा कि कोई राहत मिली और उससे आगे बढ़ने का भी एक चांस मिला, लगा नहीं करना ही है जी। नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी, बहुत से भाई बहनों का कहना है कि अव्यक्त मुरलियां हम बहुत समय से ला रखी थी, पढ़ नहीं पाए, लेकिन मेरा अनुभव तो यह है कि प्रवृत्ति में रहते हुए, ज्ञान में चलते हुए, अमृत वेला हो गया, नुमा शाम हो गया, धारणाओं पे चल रहे हैं, पवित्रता है, इससे ज्यादा क्या करना है। अव्यक्त मुरली पढ़नी है ये संकल्प भी नहीं था। और आज सबसे बड़ी बात की हैरानी यही है कि बस ऐसा लगता है कि कैसे भी ये मुरलियां जरूर जरूर पढ़ी जाएं, ये सिर्फ इस क्रांति की वजह से हुए, एंजल ऑफ शिवा का और भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो गीत सुना रही हूँ वो एक्चुअली अव्यक्त क्रांति 97 की मुरली में भाई जी ने होमवर्क दिया था कविता लिखने का, वही कविता है जो एक बाबा के गीत की रिदम पर है, सुनाऊंगी। तेरी अव्यक्त मुरली के सागर में जो डूब गया एक बार, तेरी अव्यक्त मुरली के सागर में जो डूब गया एक बार, संपन्न संपूर्ण बनकर वो होगा भव से पार, तेरी अव्यक्त मुरली के सागर में जो डूब गया एक बार, अव्यक्त संग्रह तेरा प्रभु लगता था बेहद विशाल, छूने से लगता था डर और हृदय में उठते थे लाखों सवाल, अंतर में झांका तो पाया यही है योगी जीवन की स्वास, तेरी अव्यक्त मुरली के सागर में जो डूब गया एक बार, एक एक महावाक्य तेरा प्रभु जैसे हो एक एक मणि, भर ले खजाना मनवा कहीं ना आ जाए अंतिम घड़ी, एक एक महावाक्य तेरा प्रभु जैसे हो एक एक मणि, भर ले खजाना मनवा कहीं ना आ जाए अंतिम घड़ी, लगता है मानो स्वयं ही तूने थामा हो मेरा हाथ, तेरी अव्यक्त वाणी के सागर में जो डूब गया एक बार, देख तेरे इन सपूतों ने बाबा करिश्मा ये कैसा दिखाया, हिम्मत स्नेह जोश से हम सबको आगे बढ़ाया, देख तेरे इन सपूतों ने बाबा करिश्मा ये कैसा दिखाया, हिम्मत स्नेह जोश से हम सबको आगे बढ़ाया, तेरा और तेरे वीरों का कैसे करें धन्यवाद, तेरी अव्यक्त वाणी के सागर में जो डूब गया एक बार।
हे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, साथियों हम बड़े तो सब बड़े हैं।
सवार दे।